ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून के आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा। राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन विधेयकों को विचार और वापसी के लिए पेश किया है। उम्मीद है कि वो आज चर्चा का जवाब देंगी। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए विशेष टैक्स स्लैब नहीं है। भाजपा की रामीला बेन बारा ने कहा कि यह बजट गरीबों, ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं के लिए है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग की। सरकार ने भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में विदेश मंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि विदेशों में भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय मिशन उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को मदद पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति में मोटे तौर पर गिरावट का रुख है। तीसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति और नीचे आ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो की ओर से आयोजित भोज में शामिल हुई। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा सदस्य जुगल किशोर शर्मा और सौमित्र खान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तथा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से वायनाड के कलपट्टा में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस बीच केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग 500 सैन्यकर्मी ने वायनाड से वापस लौटेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के बारे में संबंधित आयोग फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में खेल आयोजनों के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अमन ने अल्बेनिया के जेमिल खान अबकारोव को 12-0 से पराजित किया। आज शाम 5:30 बजे पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए भारत का सामना स्पेन से होगा। देर रात नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।